लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन के संत दामासुस प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
मरी फ्रतेली सोरेले बोंजोर्नो। Abbiamo più volte richiamato in questa serie di catechesi come la preghiera sia una delle caratteristiche più evidenti della vita di Gesù.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। प्रार्थना पर अपनी धर्म शिक्षा माला के दौरान हमने कई बार इस बात की याद की है कि प्रार्थना यीशु के जीवन का अति महत्वपूर्ण भागों में से एक था। अपने प्रेरिताई के दौरान वे प्रार्थना में डूबे रहते थे, क्योंकि अपने पिता से वार्ता उनके जीवन के अस्तित्व का उद्दीप्त अंग था। सुसमाचार हमें यीशु ख्रिस्त के प्रार्थना में जीवन का साक्ष्य देता है कि कैसे अपने दुख भोग और मृत्यु की घड़ी में वे और अधिक तीव्र और सघन रूप में प्रार्थना करते हैं। इन सारी घटनाओं की चरम सीमा ख्रिस्तीय सुसमाचार प्रचार का केंद्र बिंदु है। यरूशलेम में यीशु का अपने जीवन की अंतिम घड़ी को जीना सुसमाचार का हृदय है। यह केवल इसीलिए नहीं क्योंकि सुसमाचार लेखकों ने उन घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्हें अनुपातिक रूप में अधिक स्थान दिया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यीशु ख्रिस्त का मरण और पुनरुत्थान तड़ित की भांति उनके पूरे जीवन पर प्रकाश डालती है। वे कोई समाज सेवी नहीं थे जिन्होंने दुख सहते और बीमार मानवता की सेवा की, अपितु वे उससे भी बढ़कर थे और हैं। हम उनमें न केवल अच्छाई को देखते बल्कि मुक्ति को पाते हैं, वह मुक्ति जो मुझे केवल एक बीमारी या एक निराशा भरे क्षण से बचाती है, वरन हम उनमें अपनी पूर्ण मुक्ति मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के द्वारा मिलने वाली मुक्ति को पाते हैं, जो हमें मृत्यु पर जीवन के विजयी होने की आशा दिलाती है। संत पापा ने कहा,
Nei giorni della sua ultima Pasqua troviamo dunque Gesù pienamente immerso nella preghiera.
हम यीशु को उनके दुख भोग में प्रार्थना की गहराई में डूबा हुआ पाते हैं। वे नाटकीय ढंग से अपने घोर दुख और पीड़ा में गेत्सेमानी बारी में प्रार्थना करते हैं। यीशु खासकर उस घड़ी अपने पिता ईश्वर को अब्बा कहकर संबोधित करते हैं। अरामाइक यीशु की भाषा में यह एक अति घनिष्ठ संबंध और विश्वास को व्यक्त करता है। वे अपने में घोर अंधकार से घिरा हुआ अनुभव करते और इस परिस्थिति में वे अब्बा शब्द को उच्चारित करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यीशु क्रूस से भी विनती करते हैं, यद्यपि वे पिता को घोर शांति में बना हुआ पाते हैं। यहाँ पुनः उनके होठों से पिता शब्द निकलते हैं। यह अति शक्तिशाली प्रार्थना है जो क्रूस से यीशु की सर्वोत्तम मध्यस्थता की प्रार्थना है। वे हम सबों के लिए, दूसरों के लिए, यहाँ तक कि उनके लिए भी जिन्होंने उन्हें मौत दी, याचना करते हैं। सभी उनके खिलाफ और उदासीन रहते, सिर्फ एक डाकू ही उनकी शक्ति से वाकिफ है। हे पिता, तो उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इस दृश्य के बीच अपनी असहनीय पीड़ा में यीशु दुनिया के गरीबों हेतु, खासकर जो सबों के द्वारा भुला दिए जाते हैं, याद करते हुए स्तोत्र 22 के वचनों को उच्चारित करते हैं, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वे अपने में छोड़ दिए जाने का अनुभव करते हैं। क्रूस को हम पिता के परिपूर्ण प्रेम उपहार स्वरूप पाते हैं, जहां हम मुक्ति की पूर्णता को देखते हैं। यीशु पुनः अपने पिता को पुकारते और कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। क्रूस में 3 घंटे ये सारी चीजें हमारे लिए प्रार्थनाएं हैं।
Gesù dunque prega nelle ore decisive della passione e della morte.
यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में दुख भोग और मृत्यु के निर्णायक क्षणों में प्रार्थना करते हैं। पुनरुत्थान के द्वारा पिता यीशु की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। यीशु की प्रार्थना अपने में गहन है। उनकी प्रार्थना अनोखी है, जो हमारे लिए आदर्श बनती है। वे सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक जन के लिए। क्रूस पर वे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं।
Gesù può dirci a ognuno di noi, ho pregato per te nell'ultima cena e sul legno della croce.
मैंने अंतिम व्यारी में और क्रूस के काट से तुम्हारे लिए प्रार्थना की। इस तरह अपने जीवन के अत्यंत दर्द भरे क्षणों में भी हम सभी अपने में अकेले नहीं हैं। यीशु की प्रार्थना हमारे साथ है। वे निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हुए याद करें कि वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
E questa mi sembra la cosa più bella da ricordare, è ricordare la grazia che noi non solamente preghiamo, ma che per così dire siamo stati pregati. Siamo già accolti nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione dello Spirito Santo.
मेरे लिए प्रार्थना की इस अंतिम धर्म शिक्षा माला में यह याद करना कितना सुंदर लगता है। हम केवल अपने में प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि हमारे लिए प्रार्थना किया गया है। हम यीशु ख्रीस्त की वार्ता भरी प्रार्थना में पिता के द्वारा स्वीकार किए गए और पवित्र आत्मा से संयुक्त हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस बात को कभी ना भूलें, हमारे जीवन की सबसे खराब परिस्थितियों में भी। हम यीशु ख्रिस्त में प्रेम किए गए हैं, यहाँ तक कि उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के क्षणों में भी। हमें सभी चीजें दी गई हैं। अतः अपनी प्रार्थना और जीवन में हम साहस और आशा में बने रहते हुए यीशु की प्रार्थना को सुने और आगे बढ़ते जाएं।
Che la nostra vita sia un dare gloria a Dio, consapevolezza che Lui prega per me al Padre, che Gesù prega per me.
हम इस विवेक में बने रहें कि हमारा जीवन ईश्वर की महिमा हेतु है। हमारे लिए यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई भक्ति न कोई कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई भक्ति न कोई इन स इंसान में कोई फर्क नहीं, इंसानों में कोई फर्क नहीं, न कोई ऊंचा नीचा न कोई हानि न कोई। कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई, भक्ति न कोई। कहते हैं यीशु इस दुनिया में दया से बढ़ के भक्ति न कोई, भक्ति न कोई।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार 16 जून को वाटिकन के संत दमासुस प्रांगण में आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना पर अपनी धर्म शिक्षा की एक लंबी श्रृंखला का समापन किया, जो महापुरोहित मसीह की प्रार्थना पर केंद्रित थी। इसी के मद्देनजर संत पापा ने ट्वीट कर दूसरों के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, जब हम दूसरों के लिए विनती करते हैं और उनकी चिंताओं एवं जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी और पूरी होती हैं। प्रार्थना हमें न किसी से अलग करती है और न ही किसी को दरकिनार करती है, क्योंकि यह सभी के प्रति प्यार है। उधर अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ एकजुटता के अपने शेयर द जर्नी यात्रा साझा करें अभियान की समाप्ति की घोषणा की। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने अधिक सम्मानजनक जीवन की तलाश में अन्याय, गरीबी, पीड़ा और हिंसा से भाग रहे लोगों के साथ जागरूकता बढ़ाने, सुनने और काम करने के उद्देश्य से शेयर द जर्नी अभियान शुरू किया था। 4 साल के अभियान ने प्रवासियों, शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों का आपस में मिलने का स्थान, अवसर और आपसी समझ की संस्कृति को बढ़ावा दिया और एक वैश्विक अभियान में 130 पहलों का समर्थन किया गया, जिसमें 162 राष्ट्र कारितास एजेंसियां शामिल थीं। अभियान के अंत को औपचारिक रूप से चिन्हित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कारितास ने मंगलवार की सुबह इस विषय पर वाटिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। शेयर द जर्नी कैंपेन के 4 साल बाद भविष्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कारितास प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। वक्ताओं में लोक धर्मियों के सुसमाचार प्रचार के लिए बने धर्म संघ के प्रीफेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय कारितास के अध्यक्ष कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले, अंतर्राष्ट्रीय कारितास के महासचिव अलोसियस जॉन, समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विकास के सचिव मोनसिन्योर ब्रूनो मेरी डफ और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय कारितास के समन्वयक सिस्टर मरिया डी लुइस लोदी रेसिनी शामिल थे। अपने भाषण में कार्डिनल तागले ने यात्रा साझा करे अभियान की यात्रा का मूल्यांकन किया। उन्होंने इस पर प्रकाश डाला कि इस अभियान ने प्रवासियों तक पहुंचने, उनकी गरीबी और पीड़ा को गले लगाने, उन्हें इस विश्वास के साथ ऊपर उठाने में मदद की है। वे संख्या नहीं है, परंतु नाम, कथा और स्वप्न वाले मनुष्य हैं। उनमें यीशु मसीह को देखें, जो बचपन से ही अपने माता पिता के साथ मिस्र में शरणार्थी बन गए थे। उन्होंने कहा, कि अभियान के माध्यम से कारितास ने वैश्विक स्तर पर एक नई संस्कृति, व्यक्तिगत मुलाकात की एक जीवंत संस्कृति, ख्रिस्त या मुस्लिम, हिंदू या किसी भी धर्म और मजहब के प्रवासियों में मानव व्यक्ति का स्वागत करने की एक नई दृष्टि विकसित करने में मदद की है। उन्होंने कहा, कोविड-19 स्वास्थ्य आपातकाल के इस समय में जब राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित है, कारितास का वैश्विक अभियान विशेष रूप से इस सबसे कठिन समय में प्रवासियों के साथ यात्रा साझा करना जारी रखने का आह्वान करता है। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही अभियान औपचारिक रूप से समाप्त हो गया हो, मिशन अभी भी जारी है और उन्होंने भली इच्छा रखने वाले सभी लोगों को इसे पूरी तरह से जारी रखने के लिए आमंत्रित किया। उधर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में सांस्कृतिक मील का पत्थर, जिसमें एक आराधनालय, एक गिरजाघर और एक मस्जिद शामिल है, मानव बंधुत्व पर दस्तावेज से प्रेरित समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। मानव बंधुत्व की उच्च समिति HCHF ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अब्राहम परिवार भवन, जिसमें एक ही परिसर में एक आराधनालय, एक गिरजाघर और एक मस्जिद है और जिसका उद्घाटन 2022 में होने वाला है, 20% पूरा हो गया है। परियोजना की देखरेख करने वाली समिति ने कहा कि यह मानव बंधुत्व पर 2019 दस्तावेज से प्रेरित है। HCHF ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में सादियात द्वीप पर निर्मित इस परियोजना को संत पापा फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब ने बारीकी से निरीक्षण किया और डिजाइन का समर्थन किया। अब्राहम परिवार भवन का नाम बाइबल के पुराने व्यवस्थान के अब्राहम से लिया गया है, जो यहूदियों, ख्रिस्तियों और मुसलमानों द्वारा मान्यता प्राप्त और बहुत सम्मानित हैं। अब्राहम परिवार भवन परिसर में पूजा स्थानों के 3 अलग अलग प्रतिष्ठित घरों के नाम आधिकारिक तौर पर इमाम अल तैयब मस्जिद, संत फ्रांसिस गिरजाघर और मूसा बेन मेमोन सिनागोग के रूप में अनावरण किए गए हैं। उधर जीवन के लिए परम धर्म पीठ अकादमी ने मंगलवार को विकलांग व्यक्तियों के साथ मित्रता एक नई दुनिया की शुरुआत नामक एक नया दस्तावेज जारी किया। दस्तावेज में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विकलांग व्यक्ति और उनकी देखभाल करने वाले विशेष ध्यान और समर्थन के पात्र हैं, क्योंकि महामारी के दौरान उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह महामारी के दौरान उनके लिए अग्रिम देखभाल योजना और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने की हिमायत करता है। जीवन के लिए परम धर्म पीठ अकादमी विकलांग लोगों के संबंध में 3 मूलभूत नैतिक चिंताओं को रेखांकित करती है। पहला, विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए आवास को बढ़ावा देना, ताकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और हस्तक्षेपों से लाभान्वित हो सकें। दूसरा, विकलांगता और विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और अन्य विशिष्टताओं एवं सरकार और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित एवं एकीकृत तरीकों से समर्थन के संबंध में जैविक शर्तों से परे जाना। तीसरा, नैतिक सरोकार को एकजुटता और स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर गरीबों और कमजोर लोगों के लिए एक अधिमान्य विकल्प के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे का विकास शामिल है। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने की योजना में 4 सप्ताह की देरी की है। अब नई तारीख 19 जुलाई निर्धारित की गई है। जॉनसन ने कहा कि अगर सरकार 21 जून को पहली योजना के अनुसार प्रतिबंध हटाती है, तो अधिक संक्रामक डेल्टा संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण हजारों और मौतें हो सकती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।